रास्ता। रास्तों पे चलने से पहले हम आज के सबक का खुलासा करेंगे। यहाँ से लेकर आगे तक हम तीन मुख्तलिफ तरीके का खर्च देखेंगे। थोड़ा सा जिक्र पहले कर दिया गया था कि आयतुल कुर्सी से पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को उसके रास्ते में खर्च करने की दावत दी। खर्च करने की तीन मुमकिना सूरतें हैं। एक, सदका, दूसरा सूद और तीसरा उधार। सदका देना बेहतरीन अमल है, लेकिन बहुत सारे लोग सदका देते भी नहीं और लेने को पसंद नहीं करते। दूसरी बदतरीन सूरत जो खर्च की है वो है सूद। वो क्या होता है इंशाल्लाह इस सबक के बाद एक छोड़कर अगले पे बात होगी। जिसको बुलाना चाहें बुला लें, क्योंकि आज की सोसाइटी का सबसे बड़ा तागूत सूद का निज़ाम है। इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तो सूद के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है कि इसकी किसी तरह से भी गुंजाइश नहीं, क्यों नहीं, क्या है, उस पर हम उस मौजू पर बात करेंगे। फिर उसके बाद एक ही सूरत रह जाती है कि आप सदका लेना नहीं चाहते, सूद लेने की इजाज़त नहीं, तो फिर उधार ले लें, लोन लेना। यहाँ से आज हमें इंशाल्लाह पता चलेगा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के क्या फ़ज़ाइल हैं। माल अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं। पहले ये बातें छोटी छोटी समझ लें तो ये सारी बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। आयतुल कुर्सी से पहले की एक आयत और बाद वाली एक आयत बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आपने कोई नगीना जड़ना हो ना हीरे को, तो बहुत खूबसूरत सा जाल लेते हैं ताकि मजबूत नगीना हो, टूट ना जाए, गिर ना जाए। कभी कोई ऐसे लोहे की अंगूठी में डायमंड्स कभी नहीं लगाता। बिल्कुल अगर आप आयतुल कुर्सी के पीछे और आगे वाली आयत देख लें, पिछली आयत का आयत या अय्युल्लज़ीना आमनू अनफिकू फी सबीलिल्लाह, उसके बाद आयत है ला इकराह फिद्दीन। आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो आपको ये बात वाज़े हो जाएगी अभी तक के सबक में से कि जो कुछ भी हमारे पास है ये अल्लाह ने दिया। चंद बातों को समझ लें ताकि आज ये भी बात खुल जाए, क्योंकि ये कुरान का वो मुकाम है कि जहाँ सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इन्फाक फी सबीलिल्लाह पे बात होती है। लिखिए ज़रा लफ्ज़ इन्फाक। अलिफ नून फा अलिफ क़ाफ, क्या मानी है? खर्च करना अल्लाह के रास्ते में, टू स्पेंड। अब आप इसके अलिफ को गिरा दें, पीछे क्या रह जाएगा? निफाक। बस ये है कहानी पूरे सबक की कि इन्फाक करना मुश्किल है निफाक वाले के लिए। हम जिस चीज़ के बारे में संजीदा होते हैं हम उस पर बड़े शौक से खर्च करते हैं, चाहे वो हज़ारों का हो या लाखों का, क्योंकि हमें पता होता है कि जिस चीज़ पे लगा रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी ही है। गाड़ी हम 3-4 लाख की भी ले लेते हैं क्योंकि हमें पता उसकी यही वैल्यू है, लेकिन हम एक जोड़ा 100-200 से ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि हमें पता उसकी वैल्यू इतनी है। जिस बंदे को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये माल अल्लाह का है और उसने ये माल मुझे इसलिए दिया ताकि इस थोड़े से माल को अपनी ज़रूरियात पे खर्च करने के बाद उन बंदों की ज़रूरियात पे खर्च कर दूं जिनके पास मेरी निस्बत कम है, तो अल्लाह ताला खुश होकर मुझे ये माल हमेशा के लिए दे देंगे और वो जन्नत होगी। तो माल खर्च करते हुए इंसान का दिल घटता है। अल्लाह ताला ने यहाँ इतने खूबसूरत तरीके से बताया। हम आज के सबक में देखेंगे कि कौन से चार असबाब हैं कि जो खर्च के अजर को बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी बीमारियों को भी आज के सबक में देखेंगे कि दिया दिलाया उससे ज़ाया हो जाता है। आइए अब हम आयतों को साथ लेते हैं और बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह हम समझेंगे इन आयात को। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत अंदाज से बात की है कि मैं कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा प्यारी मिसाल दी नहीं जा सकती थी। चलिए 261, मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं इनकी मिसाल उस बीज के दाने की सी है जो ज़मीन में बोया जाता है। तसव्वुर में आ रहे आपके? कुछ एक दाना किसान के पास था और उसने उस बीज को ज़मीन में डाल दिया। हुआ क्या उस एक बीज से? अम्बतत सब असनाबिला, उसने उगाई। किसने उगाई? लिखी उस दाने ने। उस एक दाने ने उगाई 7 वालियाँ, 7 आईज, फी कुल्ली सुम्बुलतिम 100 हब्बा, हर एक बाली में 100 दाने हैं, और हैरत क्यों करते हो, 100 पे क्या मुश्किल है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ, अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगने से दुगना या बढ़ा के दे देता है, क्योंकि वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह सुबहाना ताला बहुत ज्यादा वसत वाला और इल्म वाला है। इस आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने एक मिसाल दी है और कुरान पाक का ये मिजाज हम सब समझ सकते हैं कि किस तरह हमें इस बात की दावत देता है कि तसव्वुर की आंख से बाज़ दफ़ा वो चीज़ समझ आ जाती है जो आम तौर पे समझ नहीं आती। हो सकता है कि हकीकी तौर पर हम में से किसी को भी खेत के अंदर उगे हुए दाने, लेकिन इन आयात की रोशनी में देखने को मौका मिलता है। स्क्रीन पे देखिएगा, आपकी आयत आपके सामने है। आप लोगों ने कभी किसान को खेत में किस तरह गंदम उगाते देखा होगा, किस किस का ताल्लुक गांव से है या उन्होंने ज़मीनें देखी हैं, वो हाथ खड़े करें। क्या खूबसूरत मंजर होगा कि जब आप देखें कि नीली छतरी के नीचे इस तरह खूबसूरत किस्म की फसलें उगी होती हैं। ये देखिए, हमने अभी बात जो सुनी कि एक बीज से 7 बालियां और हर बाली में 100 बीज। ये जो बाली और सुंबुला का लफ्ज़ है ना, वो आपको दिखाती हूँ अभी। इनमें से सब दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। एक बीज जमीन में गया, उसमें से ये एक बाली निकली, फिर अमूमन 7 ये छोटे छोटे होशे, और हर एक में से फिर 100 दाने। ये है आपका खर्च फी सबीलिल्लाह, युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह। कोई बंदा ऐसा है जो इस नफे को ना समझ सके? एक एक पे देख लीजिए, आपको ईमान और मोहब्बत लगेगी। और कभी आपको मौका मिले किसी भी जगह खेतों में जाके, यहाँ बाहर जहाँ भी आप जा सके, इसको देखिए, फिर पूछिए कि अल्लाह के रास्ते का खर्च क्या होता है। एक दाने के बाद दूसरा दाना, लेकिन यहाँ कौन से खर्च की बात है, ये सवाल पैदा होता है। फी सबीलिल्लाह, सवाल पैदा होता है कि लफ्ज़ फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है। तो लफ्जी तर्जमा देखें तो मानी क्या बनता है कि अल्लाह के रास्ते में। एक तरफ अल्लाह है तो दूसरी तरफ बंदा है। आप ये कह लीजिए कि सबीलुल्लाह खर्च वो है जो बंदे को रब से जोड़ दे। बज़ाहर हम ये माल किसी इंसान के हाथ में भी दे सकते हैं जो दीन के काम पे लगा है। कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है कि जो अल्लाह के दीन का काम करना चाहता है और उसके पास कुछ नहीं है, आप उसके हाथ में देंगे, बज़ाहर आप किसी इदारे, किसी मस्जिद, किसी मदरसे को देंगे, लेकिन उसका हाथ बीच में से निकल जाता है जिसको आप दे रहे हैं, और आपका हाथ बराहे रास्त अल्लाह के हाथ पे पड़ता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कामल किया था कि जब किसी को सदका देती तो अपने दिरहम को खुशबू लगा लेती। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो कहने लगी कि मैंने सुना है कि जब कोई किसी को अल्लाह के लिए देता है तो उस बंदे के हाथ पे पड़ने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है, और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा दिरहम अल्लाह ताला के रास्ते में जाए तो उस वक़्त उसमें से खुशबू आ रही हो। तो फी सबीलिल्लाह क्या है? अल्लाह के दीन को बुलंद करने का रास्ता। लफ्ज़ फी सबीलिल्लाह पे सूरह तौबा में बहुत बात होगी। एक अमूमी सा असूल समझ लीजिए कि जिन आयात में फी सबीलिल्लाह के लफ्ज़ से पहले या बाद में लफ्ज़ किताल आए, लिख लीजिए बात, किताल आए, तो वहाँ फी सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद पर खर्च करना होता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फी सबीलिल्लाह खर्च कहाँ होगा? अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद समझो। नीड ऑफ द आवर को देखो, वक्त की डिमांड देखो, किस जगह लोग खर्च नहीं कर रहे, किस जगह खर्च करने से फायदा है। बस अब होता क्या कि दुश्मन आ चुका है तो ऑफ कोर्स तलवारें खरीदनी पड़ेंगी, तीर लेने पड़ेंगे, हथियार खरीदने पड़ेंगे, लेकिन ये कब होता है? जब दुश्मन आके हथियार दिखाता है, लेकिन जब दुश्मन नहीं आया होता तो उस वक़्त तीरों और तलवारों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस वक़्त जहालत को ख़त्म करके इस्लाम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत होती है। हर बंदा अपने दिल से खुद पूछे कि आज के दौर में अल्लाह के दीन का कौन सा गोशा निगलेक्टेड है। देखिए, हम तो मुसलमान हैं ना, आप अपनी बात ना करें, नॉन मुस्लिम भी बहुत चैरिटी करते हैं। मस्जिदों वाले ही नहीं, चर्चिस और सेनिगॉग्स वाले भी जलजला जदगान को, भूखे नंगों को, और जहाँ भी कोई आफत आती है वहाँ भर भर के कंटेनर्स के कंटेनर भेजते हैं। जहाँ सब भेजते हैं वहां भेजना भी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं भेजूंगी, कोई और भेज देगा। लेकिन आज जिस चीज के ऊपर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस पे कोई गैर नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा ना, वो जहालत को दूर करना और इस्लाम को फैलाना। देखिए ये बात आप मानते नहीं, वन मुसलमान मुल्कों में जलजला आता है, पेट भरने के लिए आपको नॉन मुस्लिम कमेटीज कम जो है वो खाने के कैन के डब्बों के डब्बे भेज देंगी, भेजेंगी ना, सर्दियां होगी ब्लैंकेट्स के ब्लैंकेट्स भेजेंगी, वो कहते हैं कि ये ह्यूमन नीड्स है। लेकिन क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम नाम लिए बगैर सोच लें किसी मुल्क या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो कहते हैं कि देखो ये मुसलमान जो हैं ये दीन नहीं सीखते, ये अच्छे मुसलमान नहीं, और इनको दीन सिखाने के लिए कुछ किताबें लेके भेजो, इनको कोई मदरसे बना दो, कोई मस्जिद बना दो, कोई करेगा? हम खुद नहीं करते, दूसरे कौन करेंगे? हाँ वो भी इस्लाम के नाम पे स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन उस इस्लाम को जो उनकी मर्जी को फिट करेगा। तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ फी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ लगाकर एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया कि तुम में से हर एक खुद सोच ले कि मुझे कहाँ खर्च करना है, किस तरह से करना है। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब आप इस फील्ड को सामने रख के देखिए कि जब आप फी सबीलिल्लाह ही खर्च करते हैं तो हर बंदे की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए, कि जो मैं खर्च करूँ उसका ज्यादा सदका जारिया हो, यही चीज़ है ना। तो कौन सी चीजें हैं जो किसी की फसल को बढ़ा देती हैं? सबसे पहली चीज अच्छी जमीन। किसान क्या चूज करता है कि जमीन कहाँ पे हो, जिसको आप कहें कि जरखेज जमीन कौन सी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज जिस पे किसान मेहनत करता है वो है अच्छा बीज, ठीक है। जमीन बहुत अच्छी हो, बीज खराब हो, तो भी कुछ नहीं बनेगा और इसका ऑपोजिट भी नहीं बनेगा। तीसरी चीज लिखिए कि किसान अच्छी जमीन भी ले चुका, अच्छा बीज भी उसने ले लिया, उसके बाद मौसम का इंतजार करेगा, किस बीज को किस मौसम में लगाना है, ठीक है। सर्दी का बीज गर्मी में डाल देंगे तो जाया हो जाएगा, इसका ऑपोजिट आप खुद ही समझते जाइए। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है कि किसान जब बीज डाल देगा मट्टी में, जमीन भी चूज कर ली, मौसम भी देख लिया, उसके बाद क्या करेगा? हिफाजत करेगा कि जो बीज डाला है, अब अगर उसमें से कोई छोटी सी पतला सा डंठल निकलता है तो ये ना हो कि चिड़िया आके उसको चुग जाए, ठीक है। तो गोया कि फिर उसके बाद उसको उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब बीज से फसल उगेगी तो किसान को फिक्र किस बात की होनी चाहिए कि अब इसको काटू, फसल आ गई है, सब हो गया, देख देख के खुशियां मना रहा है, लेकिन बीज नहीं काट रहा, फसल नहीं काट रहा, तो फिर आखिरी उसकी कोशिश क्या है कि फसल को काटू। चलिए फसल भी आपने काट ली, अब क्या, अब कटी हुई फसल को ऐसी जगह पहुंचाऊं कि जहां इसके फर्दर स्टेप्स पूरे करके इसको इंसानों की बेहूद तक पहुंचा जाए। आखिरी जिसको आप कहना चाहिए कि बीज जमीन में जाता है उससे लेकर उसकी सक्सेस का आखिरी नुक्ता क्या है, कि ये किसी ऐसे नीडी जरूरतमंद भूखे हम जैसा कोई भी जो खाता है उसके घर पहुंच जाए, ऐसे ही है ना। उसके बाद भी मेरी आपकी मर्जी है, हम उससे आधा आटा फेंक दें सिंक में पकाए ना, लेकिन किसान की एफर्ट उस दिन पूरी हो जाती है जिस दिन अपनी फसल को वो समेट समाट के पूरी करके बेच के पैसा लेके घर आ जाता है, वो कहता है अब मेरा काम पूरा हुआ, ठीक है। इस दौरान आप देखिए कि किसान की मेहनत, किसान का दिन का जागना, रात का जागना, किसान का आसमान पे नजरें लगाना कि किस तरह से आसमान से पानी आएगा और मेरी इस फसल की आबजारी होगी। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो भी नुकसान होने का खतरा होता है। बस आप इन सारे मराहल को अल्लाह के रास्ते के इन सारे स्टेप्स के ऊपर ले आइए, आपको लगेगा कि बिल्कुल वो साथ साथ चलती है। मसलन कैसे, आप देखिए कि जब दाना किसान के हाथ से निकलता है, और आपने सुनी होगी बात किसानों से अगर कभी पढ़ा हो या टीवी में देखा हो कि किसानों को बाज दफा फसल के लिए पहला बीज खरीदना पड़ता है, खरीद के लाए, आप इमेजिन तो करिए ना कि 2 किलो गंदम खरीद के लाया पैसों के लिए, और उसके बाद उस सारे को अपने हाथों से मट्टी में डाल दिया, ये कोई अकलमंदी है? सोचो जरा, है कोई बात, इतनी पैसे दे के लाया और अब उसके बाद मट्टी में डाल दिया। अच्छा फिर ये भी नहीं कर सकता किसान के ऊपर शीशे में डाल के जार को खूबसूरत सजा सजा के रख दे, डालना भी उसको मट्टी में पड़ेगा और फिर अपनी आंखों से थोड़ी दिन छुपाना भी पड़ेगा, लेकिन उसको यकीन किस बात का कि इंशाल्लाह एक दिन ये मेरी कोशिश रंग लाएगी और मिट्टी के अंदर से ये बीज फूटेगा। इसी तरह अल्लाह के काम करते हुए सबसे पहले एक बंदे को ये देखना चाहिए, नंबर एक, कि किस ज़मीन पर डालूँ। देखिए हम सब है ना मुसलमान हैं, हमारा अच्छे बुरे दिनों में दिल भी चाहता है कि हम खर्च करें, और अक्सर लोग सवाल भी कर रहे होते हैं कि किसको दें, किधर दें, किसके साथ क्या मामला करें। तो उस वक्त दिल में सवाल आता है, फलां कुछ नहीं करता, फलां करता है, जातों को पकड़ाते हैं, कहते हैं जी बस जी ज़कात के पैसे इधर डाल दो, कोई कहता है जी बुरा ख्वाब देखा है, देख लिया है। सबसे पहले जो मेरा और आपका काम है ना, वो क्या है कि हम सोचें, देखें, ढूंढें वो जगह जहां मेरे दिए हुए पैसे का ज्यादा अच्छा नफा है। ज़रख़ेज़ ज़मीन किस जगह देने से मेरी एक जो है वो हज़ारों में बढ़ती है, और कहाँ करोड़ों में, और अल्लाह जिसके नफ़े को जितना हम कर दे। फिर दूसरी चीज़ देखिए कि जब हम देते हैं ना, तो हमें बीज को देना है ना, बीज क्या है, हमारी नीयत है। आपको पता है कि अरबी जुबान में गुठली को नवा कहते हैं, नून वाव खड़ी ज़बर या के ऊपर, और नवा ही रूट है नीयत का। जिस तरह गुठली या बीज ज़मीन में छुपा होता है ना, इस तरह हमारी नीयत भी हमारे दिल में छुपी होती है। जितनी अच्छी नीयत से कोई काम करेंगे, आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आपका बीज अच्छा है, उतना फूलेगा। फर्स्ट थिंग, किस जगह पे दे रहे हैं चेक कीजिए। दूसरी जगह बहुत अच्छी है लेकिन उस पर आपकी नीयत भी और अच्छी है, तो होगा क्या? मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपने सोचा कि फलां जगह पे चंद तालिबिल बैठ के पढ़ते हैं, तो ऐसा करती हूँ कि मैं वहाँ दे देती हूँ। आपने चूज़ कर लिया कि उस जगह ये लोग सीख रहे हैं, इस जगह ये कर रहे हैं, मैं ये कर लेती। तीन चार जगहों में से आपने एक चूज़ कर ली, गोया कि जगह चूज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपकी नीयत है, आप कहते हैं क्या दूँ, कैसे पंखा लगवा देती हूँ। अब पंखा कौन सा लगाऊँ, वो जाके कोई सस्ते से ब्रांड का, या कोई ऐसे चलो फटा हुआ पुराना घर का लगा दूँ, या कोई भी सोन। ये अब आपकी नीयत है। जितनी आपकी नीयत खालिस होगी ना, बास जगह वो पंखा जाने के 2 दिन के बाद ख़राब हो सकता है, कोई आफत ही आ सकती है और वो पंखा जल गया। और बास दफ़ा वो पंखा जाए वो उस पूरी बिल्डिंग के बाद जब वो उतर जाते हैं तो वहाँ से उतार के कहीं और लगा देते हैं। समझ आ रही है? यानी जितनी खूबसूरत आपकी नीयत होगी, आपकी नेकी उतनी एवर लास्टिंग होगी। अब कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने जब बैतुल्ला की तामीर सानी की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें सिर्फ हलाल की कमाई कबूल करेंगे, हम डाउटफुल माल नहीं लेंगे, ये अल्लाह का घर है। और आखिर वो खतीम की जगह ऐसे ही छोड़ दी, आगे ऊपर दीवारें नहीं डाल सके, नहीं डाली। क्यों? क्योंकि उनका भी ईमान था कि बरकत चली जाएगी। यही याद रखिए कि आज के दौर में भी हम सब के लिए बहुत ही अहम बात है कि अल्लाह के दीन के लिए जब भी कोशिश करें तो हमेशा अपने आप को चेक करें, मेरी नीयत कैसी है, मेरा इखलास कैसा है। फिर वो सारे स्टेप आप खुद ही सोचते जाए। बीज हाथ से जाता है तो दिल थोड़ा होता है ना, इसी तरह जब माल हाथ से जाता है तो थोड़ा होता है। फिर आप देखिए कि अगर दाना बेकार हो तो फसल को घुन लग जाती है, फसल नहीं होती, खराब कभी फसल उग जाती है। इसी तरह जब हम बुरी नीयत से देते हैं, बुरी इरादे से देते हैं, तो खराबी क्या होने लगती है कि खराब होता है। बस वह फसल उगाती है, कीड़े मकोड़े आ गए, सुसरी पड़ गई, सुंडी पड़ गई। तो हमारे अल्लाह के रास्ते में कामों में बरकत होने की वजह हमारी अपनी नीयत, हमारा अपना सब कुछ होता है। बाज़ दफ़ा हम हिफाजत नहीं कर पाते, बाद में उसमें ताने दे देते हैं, बाद में किसी गरीब को दिया तो उसकी इज्जत खराब कर दी, और बाज़ दफ़ा मौसम ठीक नहीं होता। ज़रूरत तब थी, हमने उस वक़्त नहीं दिया, हमने उस वक़्त दिया जब हमारे पास कुछ फालतू बचा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ बयान करके हम सबको बता दी कि जिस तरह आज दुनिया में एक दाना तुम्हें 100 दाने दे के दुनिया से जाता है, इस तरह क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा। नबी सल्लम जब मेराज की रात पे गए तो आपको दिखाया गया कि कुछ लोग हैं एक फसल काट रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फसल बढ़ती है, वो आते हैं और जल्दी से अपनी वो जो होते हैं ना कटर्स, क्या बोलते हैं, दरांती वगैरह, उससे काट के उसके डंठल बना के रखते हैं। अभी वो ये काम करके फारिग नहीं होते, उसके बाद फिर फसल तैयार हो जाती है, वो फिर उसको काटते हैं, और इसी तरह ये अभी वो फारिग नहीं होते तो दूसरी फिर फसल तैयार होती है। तो नबी सल्लम ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि ये कौन लोग हैं कि इनका अजर इतनी जल्दी बढ़ जाता है कि अभी वो समेट नहीं पा रहे तो दूसरा आता है। तो कहा कि ये अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं, जिन्होंने अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के नाम को बुलंद करने की कोशिश की, अल्लाह ताला इनका अजर कभी ज़ाया नहीं करता। आप देखिए सूरत अल कहफ में हर जुमे आप पढ़ते होंगे, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल और बेटे ये दुनिया की जीनत है लेकिन बाकी रहने वाली नेकियां वो हैं जिनकी अल्लाह के पास उम्मीद करनी चाहिए। तो हम में से हर एक को ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए जितना ज़्यादा अपने हाथ से अल्लाह के रास्तों में खर्च करके जाएं, वो पौधे लगा के जाएं, वो करें। और ख़ास तौर पर यहाँ फ़ी सबील अल्लाह, तो याद रखिए जितना फ़ी सबील अल्लाह पर खर्च होगा उतना दीन फैलेगा, जहालत ख़त्म होगी। आज चोरी, डाका, कत्ल, गारत ये क्यों है? क्योंकि अल्लाह का खौफ नहीं है, लोगों को पकड़ का डर नहीं है। एक बंदा एक अच्छा काम कर जाता है, उसकी वजह से उसकी कितनी नस्लें संवर जाती हैं। तो हर जगह अगर मैं और आप इनफरादी तौर पे ही सही, लेकिन अपने अपने घर, हमारे मुलाजिम, यहाँ तो हमें इस तरह के इत्तेफाक नहीं होते, लेकिन जाहिर है कि हर तरह के लोग हर जगह बैठ के सुनते हैं। हर जगह देखिए, आप अपने नौकरों की जहालत ख़त्म कर दें, आप अपने घर वालों की, अपने मर्दों की, अपने बच्चों की, हम अपनी जहालत इस तरह से आप करें कि जितना इस दीन का इल्म होता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि उतनी ज़्यादा खैर और बरकत आएगी। कल के सबक में भी जिक्र हुआ था ना कि जितना मुसलमानों ने अपने दीन पे लगाना छोड़ा, उतने रुस्वा हो गए, दुश्मन को भी समझ में आने लगता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह की कुदरत का एहसास इस फसल को देखकर जिस तरह हो रहा है, सोचो कियामत के दिन क्या होगा। और यकीन करें कि इन फील्ड्स को देखने के बाद मुझे एक ऐसा ख्वाब याद आ जाता है कि जिसको ना मैं बयान कर सकती हूँ ना मैं भूल सकती हूँ, लेकिन वाकई ऐसे लगता है कि कयामत के दिन ऐसे ही होगा कि अल्लाह ताला बंदों को उनकी फसलें खड़ी करके दिखा देगा कि तुम्हारी ये फसलें लगी हुई हैं। हम सब सोचें कि हम किस किस्म की फसलें उगा रहे हैं, हमारी औलादें, हमारी फसलें, हमारे बच्चे, हमारी जान, हमारा माल, हमारा वक्त, एक एक एफर्ट हमारी जो लगती है वो किस किस चीज़ में लगती है। इसलिए अल्लाह ताला अगली आयतों में कुछ मिसालों में ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको देखने के बाद फिर इंसान अपना मुहासबा करता है। हम इंशाल्लाह इन सारी आयतों को एक स्ट्रेच में लेंगे और आप इसमें से बस पॉइंट्स नोट करते जाएं कि अभी जो बात हुई थी वो थी कि खर्च करो,